महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 15 नमः सिद्धे नमः सिद्धे प्रणीतं तं बन्ध्रतत्व प्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमामि। यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें छठवी पुस्तक में चौथा जो प्रदेश बंध अधिकार है, उसको देखते हुए भी हम पृष्ठ संख्या 86 पर आगे 86 यहाँ अपनी बात जीव समुदाहार की चल रही थी, और उसमें हम अल्प बहुत्व देख रहे थे मार्गणाओं में। यह आहारत मिश्र की अपनी बात चली थी। देखो, जीव समुदाहार में हमने दो देखे थे 84 पेज पर। एक तो जीव प्रमाणानुगम मिला, और उसके बाद अल्प बहुत्वानुगम। उसमें भी तीन प्रकार देखे थे, जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट। यानी अकेले उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट के बंधक कितने हैं, बस उसकी बात चली। जघन्य से अजघन्य के कितने हैं, उसकी बात चली थी। अब जघन्य और उत्कृष्ट में अल्प बहुत्व लगा है, यानी जघन्य करने वाले जीव ज्यादा है कि उत्कृष्ट करने वाले ज्यादा है। तो ये बात 84 पेज पर नीचे के दो लाइन में बताई थी कि आठ कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जीव सबसे स्तोक है, और इनसे जघन्य प्रदेशों के बंधक जीव अनंत गुणे हैं। उसका हमने अर्थ भी क्यों देखा था, क्योंकि उत्कृष्ट बंधक छह कर्मों का तो दसवें में होता है, मोनिय का तो पहले से नौवे तक कहीं पर भी, संगी पंचनीय पर्याप्त उत्कृष्ट योग वाले के होता है, और आयु का भी उत्कृष्ट योग से जब बंद हो रहा है तब होता है। जघन्य के तो अनंत जीव कर रहे हैं सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त के उपाधि योग में, और उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट वाले असंख्यात गुण में, ये हमने देखा था। और उसी के अनुसार हमने मार्गणाओं में देख रहे थे। हम आए 86 पेज पर 86 वर्ष आहारक मिश्र का आयोग की हमने बात देखी थी। निकालो ये दूसरा जो नया पैराग्राफ है 163 का, उसमें नीचे से पांचवी लाइन के आहारक मिश्र का योगी जीवों में आठ कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जीव सबसे स्तोक है। क्योंकि वो कब होगा, हाँ, क्योंकि आहारक मिश्र में योग तो बढ़ते चला जाता है, जिसको कहेंगे एकांत वृद्धि वाला, वो आहारक मिश्र का अंतिम समय, यानी आहारक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पहले वहां वो योग उत्कृष्ट होगा, तो वो जीव सबसे कम है उनकी संख्या। क्योंकि एट ए टाइम उसमें कितने हो गए, वैसे आहारक ही संख्या है, उसमें से उनमें कितने हो गए, तो सबसे थोड़े एक समय पहला। उसमें आहार बाद में तो आहारक का योग चालू हो जाता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। आहारक मिश्र की बात, आप आहारक की बात पढ़े, आहारक का तो ऊपर वो तो हमने देखा था, वहां जघन्य के सबसे स्तोक थे। वो जघन्य का ने वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने का समय लिया, आहारक मिश्र में आहारक मिश्र का अंतिम समय, वहां योग ज्यादा होगा, उसके जीव कम है वहां पर, उसके लिए एट ए टाइम वहां उसी पॉइंट पर आनी चाहिए। उनसे जघन्य प्रदेशों के बंधक जीव संख्यात गुणे हैं। जघन्य कब होगा, आहारक मिश्र में, आहारक मिश्र के पहले समय में।
तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आरक जीव क्योंकि आरक शरीर बना रहा है स्वरूप क्या उसके पहले से उसको आयु का बंधन चालू होगा
हो सकता है आरक मिश्र में कंटिन्यू हुआ एक समय के लिए किया तब जघन्य कहेंगे अंत में किया तो उत्कृष्ट कहेंगे आरक मिश्र एक समय का वो कैसे हुआ वहां मरण तो है नहीं है आयुबंध की अपेक्षा एक समय घटित होगा गलती से पड़ा आहारक मिश्र का नाना जीव अपेक्षा एक समय है एक जीव अपेक्षा एक समय विशेष देखा है मार्ग जिन्होंने ऐसा जो सर्व लघु काल में पर्याप्त होता है तो सर्व लघु काल का तो एक समय तो नहीं होगा ना नहीं ये बराबर नहीं है एक समय तो हो ही नहीं सकता अंतर्मुख तो होगा ये डिक्टो किया है ना तो वो करने में कुछ उसके ऊपर अंतर मुहूर्त होता है उसके नीचे एक समय को उन्होंने डिक्टो कर दिया
और मरण की अपेक्षा आठ का मुखा तो वहां पर बंद हो ही नहीं रहा है
क्या क्या
मरण होगा एक समय के लिए मरण की अपेक्षा सोचते हैं तो वहां पे
आर्य मिश्र में मरण ही नहीं है वो तो शास्त्र का वचन है आहारक मिश्र में मरण है ही नहीं आयुबंध के बारे में दो मत आयुबंध नहीं होता ऐसा भी एक मत है और आयुबंध अभी यहाँ तो हम होता है ऐसा देख रहे हैं ये तो हमने देखा ना उत्कृष्ट वाले कम है जघन्य वाले संख्यात गुणे हैं और अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जीव संख्यात गुणे हैं क्योंकि जघन्य कब होगा आहारक मिश्र के पहले समय में बाकी जो बीच का अंतर्मुख काल है उसमें अजघन्य अनुत्कृष्ट होंगे परंतु जीव संख्या की है टोटल इसलिए संख्या गुणा कह दिया इसी प्रकार अपगत वेदी मन परिज्ञानी संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में जानना चाहिए ये क्या जानना चाहिए कि उत्कृष्ट के कम है जघन्य वाले संख्यात गुणे हैं और अजघन्य अनुत्कृष्ट के उससे भी संख्यात गुण है विभंग ज्ञानी जीवों में आठों कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जीव सबसे स्तोक है यानी यहाँ तो ये संगी पंचेंद्रिय है ही पर्याप्त है ही अभी केवल उत्कृष्ट योग वाले है ऐसा कहना पड़ेगा उनसे जघन्य प्रदेशों के बंधक जीव असंख्यात गुणे हैं ये पर्याप्त होते ही लेना है कैसे लेना स्वामी तो देखो परिणाम योग नहीं होता ना गोलमान योग स्वामी तो मिला क्या अश्विन में आर्य में 22 के आसपास देख रहे थे ना कल विभंग ज्ञानी 27 पेज पर है जगन चाहिए ना हमें देखो जो अन्यतर चारों गति का विभंग ज्ञानी जीव गोलमान जघन्य योग वाला है और आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला है वह आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। पेज 27 पर आई बात है। तो वहाँ बलवान योग है, छह पर्याप्ति पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मन की पर्याप्ति भी पूर्ण होना चाहिए। उत्कृष्ट में केवल उत्कृष्ट योग इतना ही लिया था ना। ये उत्कृष्ट की बात 19 पेज पर है। मिला 19 पेज पर तीसरी लाइन, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभव्य मिथ्यादृष्टि वगैरह। तो संगीत और उसमें होते ही है, सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। इन्हें उत्कृष्ट योग वाला है, सात कर्मों का बंध कर रहा है, और जघन्य प्रदेशों के जघन्य योग है और आठ कर्मों का बंध कर रहा है। उत्कृष्ट योग कम बार होता है, हम ऐसे भी देखते हैं ना, योग स्थान जो देखे थे उत्कृष्ट और हमने देखा था कि उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जो असंख्यात बने। अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवन में सात कर्मों का भंग सामान्य मनुष्यों के समान है, क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट का होगा दसवें गुण स्थान में, उत्कृष्ट योग वाले के छह का उत्कृष्ट होगा, और चौथे से नौवे तक मुनि का कहीं पर भी उत्कृष्ट हो सकता है उत्कृष्ट योग के साथ। मुनि के उत्कृष्ट की बात है, मुनि के जघन्य प्रदेशों के बंधक जो सबसे स्तोक है, इन्हें सात कर्म ने आयु सहित सात कर्म लिया। मुनि को अलग लिया, देखो
उपाध
उपाध में ले सकते हैं। देखो अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, ये सम्य दृष्टि जीव है, सामान्य मनुष्यों के समान अभी हमने देखा था, ये जघन्य उत्कृष्ट उसमें मनुष्यों के समान, मनुष्यों में कहा ओक के समान है, परंतु वो अनंत गुना वाली बात चाहिए। निकालो पेज 85। तो इसमें क्या लिखा था, ओक के समान है, असंख्यात गुना कहना चाहिए। अब ये ओग है पेज नंबर 84 पर, नीचे से दूसरी लाइन, आठ कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जो सबसे स्तोक है, जघन्य उससे अनंत गुणे कहा था, यहां हम असंख्यात गुणे कहेंगे। समय दृष्टि में उत्कृष्ट के बंधक सबसे कम है, जघन्य के असंख्यात गुणे हैं, और अजघन्य अनुत्कृष्ट के उससे भी असंख्यात गुणे, ये कथन होगा उसमें। यानी कि कौन सी प्रकृतियों में, छह कर्म और आयु, मुनि का अलग बताएं, क्योंकि मुनि के जघन्य प्रदेशों के बंधक जीव सबसे स्तोक है। अभिनिबोधि ज्ञानियों में मुनि के जघन्य प्रदेश चाहिए, उनसे उत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जीव असंख्यात गुने। अन्य छह में, अन्य सात में कैसे लिया था, उत्कृष्ट कम थे और जघन्य असंख्यात गुणे के, यहाँ मुनि के जघन्य वाले सबसे कम है और उत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जो असंख्यात गुणे, क्योंकि मुनि का उत्कृष्ट कहाँ होगा, चार से नौ में कहीं पर भी होगा गुणमान्य, इन्हें उत्कृष्ट योग के साथ। और जघन्य कब होगा, मुनि का सम्यक के साथ जीव उत्पन्न होता है पहले समय में, और वहाँ उसका जघन्य योग होगा, उसके जगन्य प्रदेश बंधक होगा, यानी हमारी भाषा में उपवाद योग में उसको जगन्य लेगा। और उत्कृष्ट तो कभी भी हो सकता है, तो ये असंख्यात गुण है, यानी उत्कृष्ट योग वाला जीव लेगा, यानी ये परिणाम जिसको हम कहें गोलमान योग, उनसे अजगन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जीव असंख्यात गुण है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी शुक्ल लेशा वाले सम्यक दृष्टि शायिक सम्य दृष्टि और उपशम सम्य दृष्टि जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है शुक्ल लेशा और क्षायिक सम्य दृष्टि जीवों में आयु कर्म का भंग आनत कल्प के समान, यानी संख्यात जीव ही आयु का बंध करते हैं, इसलिए वहां संख्यात गुणा वाली बात होगी। देखो आनत का भंग निकालो, जहां नारकी है ना उसके पांचवी लाइन, आनत कल्प से लेकर अपराजित तक के देवों में वही भंग है, इतनी विशेषता है, इनमें आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेशों के बंधक जीव सबसे स्तुत है। यानी यहाँ टोटल संख्या जीव है जो आयु का बंध कर रहे हैं, उसमें उत्कृष्ट करने वाले कम हैं, जघन्य उससे संख्यात गुणे हो गया और अजगन्य अनुत्कृष्ट उनसे भी संख्यात गुणे। तथा छह कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेशों का बंध करने वाले जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि शुक्ल लेशा क्षायिक में श्रेणी भी होती है, उनसे जघन्य प्रदेशों का बंध करने वाले जीव संख्यात गुणे हैं। उत्पन्न होने के पहले समय में शुक्ल लेशा के साथ देव में जाएगा या देव से मनुष्य में आएगा, और अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों का बंध करने वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। मोनी का इसलिए लिया ना, मोनी का जो बताया था अभिनिबोधिक ज्ञानी में मोनी का अलग से बताया था कि जगन्य कम है उत्कृष्ट असंख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार समय दृष्टि शाही समय दृष्टि सब में लगाया, फिर विशेषता में क्या बताया कि आयु का भंग अनंत के समान है, और छह कर्मों में फिर अलग से बताया। उत्कृष्ट वाले कम है, जगन्य संख्यात गुण है। जब अभिनिबोधि ज्ञानी में क्या देखा था अभी देख लो, नीचे से पांचवी लाइन 86 पेज पर अभिनिबोधि ज्ञानी में, हाँ, सात कर्मों का भंग मनुष्यों के समान, उसमें वो छह आ गए थे, क्या देखा था कि उत्कृष्ट वाले सबसे कम है और जगन्य वाले असंख्यात गुणे कहे। शायिक समय दृष्टि शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट वाले कम है और जगन्य वाले संख्यात गुणे, बस इतना ही डिफरेंस है। अभिनिबोधि ज्ञानी में असंख्यात गुणे कहा और यहाँ संख्यात गुणे, क्योंकि जगन्य ने वो तो उपवाद योग है ना, पहला समय लेगा, यानी शुक्ल लेशा वाले और क्षायिक समय दृष्टि जीव असंख्यात होने पर भी ये संख्यात गुणे क्यों कहा जगन्य, क्योंकि वो उपवाद योग वाले लेना है जन्म का पहला समय, तो संख्यात ही जीव हाँ वो तो जन्म लेते हैं मरकर, और उनसे अजगन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों का बंध करने वाले जीव असंख्यात बने, टोटल तो असंख्यात है, इसलिए यहाँ पर असंख्यात गुणे के लिए। संयता संयत जीवों में देवों के समान भंग है। अभी संयता संयत में उत्कृष्ट कब होगा और जघन्य कब होगा लक्ष्मण? हाँ, किसी का भी क्या सुनाई नहीं दे रहे?
बोलमान।
अब क्या कह रहे हैं? जगन्य कब होगा, रुपकृष्ट कब होगा? बोलमान नहीं है, क्योंकि वहाँ ना उपपाद है ना एकांत वृद्धि वाले, वहाँ तो कोई पांचों गुण स्थान के साथ तो जन्म नहीं ले रहा है, यानी गोलमान ही है उसके, संहिता संयत के थ्रू आउट गोलमान ही है। तो उत्कृष्ट और जगन्य में ऐसे अल्पबोध वो लगा लेगा। देखो हमने देवों में कैसे देखा था, परंतु देवों में भी जगन्य वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन देवों में उपपाद योग भी होता है। देखो देवों की बात यहाँ 85 पेज पर हमने देखी, जैसे नारकियों में देखा था हमने। नारकियों में देवों में जघन्य प्रदेशों के बंधक कम थे और उत्कृष्ट के असंख्यात गुणे थे।
यहाँ
कैसे होगा?
संहिता
से जीव में देवों के समान भंग क्यों कहा? फिर क्योंकि जगन्य तो असंख्य गुण हो ही नहीं सकते संहिता संयत में। संहिता संयत का स्वामित्व देख लेते हैं, है असंख्यात गुणा वाली। असंख्यात पन जघन्य कब होगा? यानी कभी भी हो सकता है। तो उत्कृष्ट वाले यानी उत्कृष्ट वाले भी असंख्यात हो गए और जघन्य वाले भी असंख्यात हो गए, फिर भी वो असंख्यात गुणा हो सकता है, इसका अर्थ है ना? जरा देख लेते हैं संहिता संयत में। अट्ठाईस पर कहीं होगा, देखो संहिता संयत उसी समान आठ प्रकार के 27 पेज पर जगन्य का स्वामी, यानी जगन्य कब होगा? तो आठ प्रकार के बंद करने वाला और जगन्य योग वाला। और उत्कृष्ट कब होगा? जब सात का बंद कर रहे हैं, है ना?
अच्छा, यहाँ पे जगन्य तो खाली आयु का बंद करेगा,
आठ कर्म और सात कर्म ऐसा लेना है ना? देखो उत्कृष्ट में देख लो, दो गति का तो है ही, उसमें तो कोई राय ये नहीं है, दो राय नहीं है। देखो संहिता संयत की बात निकाल, 19 लास्ट, यानी सात का बंद कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदेश बंद में अवस्थित है। जब सात का बंद है तब उत्कृष्ट हो रहा है, और आयु के उत्कृष्ट के लिए भी आठ का हो रहा है, परंतु योग उत्कृष्ट है, आयु के उत्कृष्ट के लिए वैसे सोचना पड़ेगा।
सो यहाँ पे जगह का आयु जब आठ का बंद होगा तभी होगा, जगह
मात्र उतने आयु के बंद के साथ जगन्य योग भी होना चाहिए। तो देवों में भी ऐसी बात आई थी ना, ये नारकियों में भी ऐसा है, आयु कर्म के उत्कृष्ट के बंधक जो सबसे कम है और जगन्य प्रदेशों के बंधक जो असंख्यात गुणे हैं, यही बात यहाँ ली, क्योंकि यहाँ जीव असंख्यात है इसलिए। असंख्य ध्वनियां लेना पड़ेगा, यानी उत्कृष्ट स्तोक है और जगन्य असंख्यात गुण है। देव में ऐसे भंग दिखाऊंगे, चक्षु दर्शन वाले जीवों में त्रस पर्याप्त जीवों के समान भंग है। पंचेंद्रिय त्रसों की बात हमने देखी थी ना,
तो सही था, देवों के समान भंग, तो देवों ने तो हमने जगन्य वाले कहा,
लिख निकालो कहानी।
ये तो 85 पुस्तक में देवों में,
हाँ देवों में, हाँ जघन्य के कम लिए थे और उत्कृष्ट के असंख्यक गुणी करते।
तो यहाँ पे जघन्य
आयु कर्म में उत्कृष्ट के सबसे और जघन्य के असंख्य, हाँ। आयु की बात मैं बता रही थी,
बाकी के कर्मों में क्या होगा?
एक्चुअली उत्कृष्ट का जब सात कर्म का उत्कृष्ट हो रहा है ऐसे लेना पड़ेगा ना, जघन्य कब होगा? आठ कर्म बनते हैं और जघन्य योग है तब, इसलिए जघन्य कम लिए बराबर। आयु में उत्कृष्ट कम है, जघन्य असंख्यात गुण आयु में, और अन्य सात में
जघन्य कम है,
हाँ जघन्य अल्प है, क्योंकि वो आठ कर्मों का आयु बंधनी चाहिए और वो भी उत्कृष्ट योग के साथ या जगन्य जगन्य वाले, और उत्कृष्ट असंख्यात गुण है, क्योंकि सात कर्मों का बंध तो करने वाले ज्यादा है ना, आयु तो कभी कभी बंधेगी। चक्षु दर्शन वाले में देखेंगे त्रस पर्याप्त जीवन के समान, ये पंचेन्द्र त्रस पर्याप्त में हमने देखा था, त्रस द्विक की बात मनुष्यों के वहां लिख के देखो, पेज 85 का सेकंड लाइन, ये मनुष्यों के समान त्रस में क्या लेना है, असंख्यात गुणा कहना चाहिए, यानी ओक के समान क्या लिखा, उत्कृष्ट के सबसे कम है, जघन्य से असंख्यात, जघन्य उनसे असंख्यात गुणे, कर्मों पर बताया ना उन्होंने,
नहीं त्रस में जगन्य,
हाँ,
हाँ।
देखो जब चक्षु दर्शन वाले है, चक्षु दर्शन वाले की बात सोचना है, त्रस की तो बात हमने सोच ली,
हाँ,
चतुर इंद्रिय लेना, जगन्य कब होगा, उपाधि योग वाला, वो भी चतुर इंद्रिय अपर्याप्त ले सकते हैं,
अपर्याप्त
समान केवल भंग है, यानी उसके अल्प बहुत तो उसके समान लेना है, उसमें क्या देखा था हमने, आठ के सबसे कम, यहाँ भी आठ कर्मों का बंध करने वाले सबसे कम हो गए, उत्कृष्ट करने वाले और जघन्य करने वाले असंख्यात गुणे, यही दिया ना वहां त्रस में, यही बताया था, इन्हें वो जीव असंख्यात है और उसमें ये अल्पभूतव घटित होगा ना, ना उत्कृष्ट कम है, और जगन्य असंख्यात गुण, जगन्य का स्वामी 27 ये चक्षु दर्शनी में सात कर्मों का जगन्य कौन है मिला सबको नीचे से चौथी लाइन लास्ट पैराग्राफ 27 पेज पर मिला कि नहीं मिला
हाँ
56 नंबर का सेकंड लाइन में अन्यतर चतुर इंद्रिय जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जगन्य योग वाला है वो सात का जगन्य का स्वामी है और आयु में
उत्कृष्ट का कम होगा
गोलमान जगन्य योग वाला लिया
तो आयु में उत्तर जाएगा उत्कृष्ट वाले कम जगन्य वाले यहाँ पे भी त्रस्त में भी छह कर्मों में
सब आठों को एक साथ लिया है
तो चक्षु दर्शन में उत्कृष्ट का बंद करने वाले कब होगी क्योंकि वो
दसवें गुण स्थान में
दसवें गुण स्थान
क्योंकि दसवां गुणस्थान चक्षु दर्शनी में है कि नहीं है हाँ तो वहां पर सबसे कम हो गया छो मुनि का उत्कृष्ट उसके उत्कृष्ट योग में होगा अलग अलग लेना पड़ेगा फिर भी कथन सबके लिए वही होगा उत्कृष्ट करने वाले अल्प है उसके स्वामी अलग अलग सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों में मनोयोगी जीवों के समान बने ये कल हमें सम्यक मिथ्यादृष्टि के लिए हमने जो प्रश्न चिन्ह
आयु का स्कूल
इसमें आया था बहुत पहले आया
था
81 पेज पर आया वो उत्कृष्ट वृद्धि की बात आई थी केवल उत्कृष्ट योग से जगन्य योग में आने वाला इतना ही लेना पड़ेगा बाकी कुछ नहीं बंद कर सात या आठ का बंद करने वाली बात उसमें लागू नहीं होगी यहाँ आते अपने पेज पर 87 पर आना समय मिथ्या दृष्टि में मनोयोगी जीवों के समान बन गए जो बताया था मनोयोगी में भी हमने क्या देखा था उत्कृष्ट के सबसे अल्प है और हाँ और जगन्य उससे असंख्यात गुण है समय मिथ्या दृष्टि में यही बात इस प्रकार अल्प बहुत समाप्त हुआ इस प्रकार मूल प्रकृति प्रदेश बंध समाप्त हुआ अब कहिए ये आसान था क्यों अभी उत्तर प्रकृतियों में देखना है उत्तर प्रकृति में तो जो मूल प्रकृतियों में जितना प्रदेश आया है अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन मूल प्रकृतियों में अलग अलग होता है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो ज्ञानावरण आदि में मत ज्ञानावरण का अधिक हो जाएगा टेपरिंग होगा अंतराय में उल्टा होगा ये ऐसी बातें हैं सब नाम कर्म में भी उल्टे क्रम से होता है ये जो कुछ हमने पहले पढ़ी है बहुत पहले उसको अभी देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा अब यहां से शुरू होता है उत्तर प्रकृति प्रदेश बंद आगे उत्तर प्रकृति प्रदेश बंद में सर्वप्रथम भागाभाग समुदाहार जानने योग्य है यानी प्रकृतियों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी बंद होता है उसी समय में ये जो आठ प्रकृतियों में तो विभाजन होता ही होता है परंतु एक एक मूल प्रकृति की जो उत्तर प्रकृति है उसी में उसी समय वो विभाजन हो जाता है तो किसके हिस्से में कितना भाग आता है उसकी बात अब पहले बताएंगे क्योंकि आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव को ये आठ प्रकार के यानी मूल प्रकृति है जो ज्ञानावरणीय कर्म का एक भाग प्राप्त होकर चार भागों में विभक्त हुआ उनमें से आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म का एक भाग है इसी प्रकार शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय और मनोपर्य ज्ञानावरणीय कर्मों के विषय में जानना चाहिए। वहां पर जो प्रदेशाग्र सर्वघातीपने को प्राप्त है, देखो अभी ज्ञानावरणीय घाती कर्म है, उसमें सर्वघाती वाले भी परमाणु है और देशघाती वाले भी परमाणु है। तो कहते जो प्रदेशाग्र सर्वघातीपने को प्राप्त है उनमें से, इन चार में से एक एक ज्ञानावरणीय के लिए सर्वघातियों के प्रदेशाग्र का चौथा भाग जानना चाहिए। सर्वघाती किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पांचों में नहीं जाएंगे, पांचों में जाएंगे, लिखी है अभी नहीं लिखा। जो इन चारों का जो बंटवारा इनके खाते में आएगा उसमें से चारों में ये चौथा भाग चला जाएगा। इसमें सर्वघाती देशघाती के पहले नहीं हो बराबर, क्योंकि एक्चुअली सर्वघाती का द्रव्य कितना होता है और देशघाती का कितना होता है याद है किसमें? सर्वघाती में कम के देशघाती कम, सर्वघाती का तो अनंत वहां भाग चला जाता है और देशघाती में तो हाँ बहुभाग, अनंत बहुभाग देशघाती वाला है। तो देशघाती तो केवल ज्ञानावरण में तो है ही नहीं, तो सर्वघाती का डिस्ट्रीब्यूशन पांच में होगा और देशघाती का डिस्ट्रीब्यूशन चार में ही होगा। पहले में पहले बताएं कि जो ज्ञानावरणी कर्म का एक भाग प्राप्त होकर चार में विभक्त होता है। आगे कुछ बात है कि नहीं है? देखो मुझे वो कर्मकांड देना जरा, उसमें से मैं आपको और बताऊंगी विस्तार से। कर्मकांड का पहला भाग, पहला म्हणजे आता निळा निळा छोटा, हा मेरी वाली बुक कौन सी है देखते हैं, इंडेक्स निकालना, उसमें वो प्रदेश बंद की बात होगी। प्रदेश बंद का प्रमाण मूल प्रकृतियों के द्रव्य का उत्तर प्रकृतियों में विभाजन, पेज नंबर 200 कर्मकांड। देखो ये गाथा 196 है कि मूल प्रकृतियों में जो पिंड रूप द्रव्य कहा, हमने देखा ना वो वेदनी में ज्यादा जाता है वगैरह, वो तो बात हमने देखी हुई थी। तो हरेक का जो अपना अपना द्रव्य है उसका अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियों में कैसे बंटवारा होता है उसका अनुक्रम कहते हैं। डायरेक्ट टीका पढ़ेंगे, उत्तर प्रकृतियों में मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण ये तो हीन क्रम, अर्थात अनुक्रम से हीन हीन जानना, जैसे मति ज्ञानावरण से श्रुत में कम, उससे में कम, उसके में कम। यहाँ तो एक भाग लिखा है परंतु वो तो इक्वल नहीं है, पहले तो एक भाग अलग निकालना फिर इक्वल भाग करना फिर वो जो एक भाग का वो बहुभाग देते जाना। तो मोहनीय में ज्ञानावरण में दर्शनावरण में तो हीन क्रम से, जैसे ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण के द्रव्य से श्रुत ज्ञानावरण का द्रव्य थोड़ा है, इससे अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य थोड़ा है, इस तरह से आगे तक जानना। पांचों में जाता वहां तो वो सर्वघाती को अलग से निकाल रहे हैं, इसलिए देखो नाम कर्म और अंतराय कर्म ये दोनों अधिक्रम अर्थात अनुक्रम से अधिक अधिक जानना, ये अनुक्रम कौन नक्की करेगा? तो हम जो कहें ना अंतराय में हम कर्मों के नाम कैसे लेते हैं, दानांतराय, भोगांतराय वगैरह, तो वो उल्टे क्रम से वीर्यांतराय में सबसे ज्यादा आया। नाम कर्म में भी उल्टे क्रम से हरेक गति के साथ जो नाम कर्म बनते हैं, जैसे देवगति युक्त वाले के 28 बनते हैं इसे, तो उसमें उल्टे क्रम से लेना। तो हम इसीलिए याद करें गति जाति शरीर इस तरह से, तो जो हम याद करते उसके उल्टे क्रम से उसमें विभाजन जाएगा। जैसे अंतराय कर्म में दानांतराय के द्रव्य से लाभांतराय का द्रव्य अधिक है, इससे भोगांतराय का अधिक है, इसी तरह से वेदनीय गोत्र आयु में बंटवारा नहीं है। क्यों नहीं है? बोलो। दो है, या तो साता बंदेगी या असाता, या उच्च गोत्र या नीच गोत्र, जितना उसके खाते में आता है पूरा उसमें चला जाएगा, आयु भी एक ही बनती है। अब जो घाती में, घाती कर्मों में सर्वघाती और देशघाती का बंटवारा बताते हैं, वो अभी बताएंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, इन तीन मूल प्रकृतियों का जो जो अपना अपना द्रव्य, पूरा ज्ञानावरण का द्रव्य, उन उसको जैसा जिनदेव ने देखा है उस यथायोग्य अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण तो सर्वावरण अर्थात सर्वघाती संबंधी द्रव्य, शेष अनंत भाग रहे यानी बहुभाग रहे उस प्रमाण देशावरण अर्थात देशघाती संबंधी द्रव्य। जैसे पहले ज्ञानावरण के प्रमाणों का जो प्रमाण कहा उसको अनंत का भाग दीजिए, यहाँ एक भाग प्रमाण परमाणु तो सर्वघाती संबंधी है और शेष बहुभाग प्रमाण परमाणु देशघाती संबंधी। यहाँ जो सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण बताया उसमें आगे बंटवारा करेंगे, वहां देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों का बंटवारा करेंगे। देशघाती जो मति ज्ञाना वर्णादि उनके द्रव्य का जो प्रमाण, उनमें सर्वघाती परमाणुओं के प्रमाण के लिए प्रतिभागार का प्रमाण कहते हैं। कहा देशघाती तो प्रकृति कही, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरि ज्ञानावरण, ये चार कर्म है वो देशघाती प्रकृतियां हैं और उसमें परमाणु देशघाती भी है और सर्वघाती भी। यह परमाणु की बात है ना, परमाणु को ही डायरेक्ट नाम दे रहे हैं। अनुभव की चर्चा तक तुमने स्पर्ध कहे थे, देशघाती सर्वघाती किसको कहना है वो यहाँ बताए, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रतिभाग है ने कितने कौन सी संख्या से भाग देने पर सर्वघाती और देशघाती होते उसकी बात है यहाँ पर। यहाँ उसके लिए उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, ये सब देशघाती परमाणु लिए, प्रकृतियां लिए, पांच अंतराय, चार संज्वलन, नौ नौ कषाय, इनके परमाणुओं के प्रमाण की नाना गुना निशाला का अनंत है। अनुभाग की अपेक्षा वो आपने जो स्पर्धक आदि बताए थे तो उसमें तो वो अनंत होते हैं। अब जो नाना गुनहानी है उतने बार दो लिखकर आपस में गुणा करना, जो प्रमाण आएगा उसको कहेंगे अन्योन्य अभ्यस्त राशि, जिसका प्रमाण भी अनंत नहीं, क्योंकि नाना गुनहानी अनंत है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि भी अनंत होगी। ख्याल में आती है ना बात, इन्हें 2:2 अनंत हो जाएगा, ये अनंत है। अब इस अनंत से भाग देना तो सर्वघाती का द्रव्य आएगा। पहले हमने देखा था अनंतवा भाग है ना, तो उसका भागार का एग्जैक्ट कितना प्रमाण है उसके लिए वस्यासी का, हम अपनी सिंपल भाषा में कहेंगे अनंत वा भाग है वो सर्वघाती का दर्द है। तो मति ज्ञानावरण आदि चार प्रकृतियों का द्रव्य केवल ज्ञानावरण के हिस्से को छोड़कर अपने सर्वघाती द्रव्य सहित देशघाती द्रव्य प्रमाण है, वो कुछ अधिक समय प्रबद्ध के आठवें भाग प्रमाण है। आठवां भाग ज्ञानावरण को मिला है, जो मिला है उसमें से मति ज्ञानावरण को कितना मिला, तो जो कुछ ज्ञानावरण को मिला है देशघाती का द्रव्य डायरेक्ट निकालते हैं। पहले उन्होंने बताया था ना सर्वघाती का द्रव्य निकालने के लिए अन्योन्य अभ्यस्त राशि से भाग देना, यानी विशिष्ट अनंत से भाग देना। अब देशघाती का द्रव्य कहते हैं, ये द्रव्य के उन्होंने बंटवारे की बात तो आगे लिखी होगी। हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे आगे चलकर। घाती कर्म के अपने अपने द्रव्य को अनंत का भाग देने पर एक पेज नंबर 204 में गाथा 199 है, क्योंकि ये पेज तो अपनी पुस्तक का है ना, अन्य कर्म कांडों में तो अलग होगा। तो घाती कर्म के अपने अपने द्रव्य को अनंत का भाग देने पर, घाती कर्म ने ज्ञान दर्शन सब में यही रूल है, एक भाग प्रमाण सर्वघाती द्रव्य है, बहु भाग प्रमाण देशघाती द्रव्य है। वहां सर्वघाती द्रव्य तो सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों में विभाग करके देना, यानी पांचों में देना, सर्वघाती द्रव्य पांचों में देना, तथा देशघाती द्रव्य देशघाती प्रकृतियों में ही देना, केवल ज्ञानावरणादि सर्वघातियों में नहीं देना। केवल ज्ञानावरणादि सभी प्रकृतियों के लिए आदि लगाया, केवल दर्शनावरण स्थान वृद्धि आदि सब उसमें ले लेना। अब ये उत्तर प्रकृतियों में विभाग कैसा होता है, तो ये सभी उत्तर प्रकृतियों का जो पिंड द्रव्य जो है, जितनी उत्तर प्रकृति एक साथ बनती है, अभी ज्ञानावरण की तो सब बंधेगी, अंतराय की सब बंधेगी, मोहिनी की जितनी अपनी अपनी बंधेगी, इस तरह से जो अपनी अपनी बनती है आवली के असंख्यात भाग का भाग देकर, बहुभाग के तो बराबर भाग कर, जिसको हम समभाग कहेंगे, एक भाग अलग निकालना है और बहुभाग के समान खंड करके हम सभी में देंगे, तो बराबर भाग करके अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियों में समान द्रव्य देना और एक भाग में से मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण की प्रकृतियों को तो अनुक्रम से हीन हीन और नाम कर्म अंतराय कर्म की प्रकृतियों को अनुक्रम से अधिक अधिक द्रव्य देना। हमने देखा था उसमें उल्टे क्रम से देना, यहाँ तो अधिक क्रम से देना कहेंगे, बात एक ही है, समझ में आती बात। हाँ, जैसे हम कहेंगे जैसे नाम लेते हैं उसी तरह से हीन हीन देना, और नाम और अंतराय में उल्टे क्रम से देना कहो या अधिक क्रम से देना कहो, बात एक ही है। यानी उसमें हमने क्या किया, पहले में पहले अवली के असंख्या पे भाग से भाग दिया, एक भाग अलग निकाला, बहुभाग के समान में बंटवारा किया, सब में समान दिया, और जो एक भाग अलग रखा था फिर उसको अवली के असंख्या पे भाग से देकर, बहुभाग पहले में, फिर एक भाग को अवली का संख्या का भाग दो, दूसरा बहुभाग दूसरे में, फिर जो बचा उसका अवली का संख्या का भाग दो, उसका बहुभाग इस तरह से दे देना। फिर अभी सर्वघाती की बात करें, इन्हें दोबारा फिर से बता रहे कि ज्ञानावरण कर्म के द्रव्य को अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण सर्वघाती, इस सर्वघाती द्रव्य का विभाग करते हैं, ये पेज नंबर 205 है। इस सर्वघाती द्रव्य को आवली के असंख्यात विभाग का भाग देकर एक भाग को छोड़कर बहुभाग के पांच भाग करके एक एक समान भाग को पांचों प्रकृतियों में देना, शेष एक भाग को आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग मति ज्ञानावरण में देना, फिर बहुभाग बहुभाग शुद्ध ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मन परि ज्ञानावरण और लास्ट वाला केवल ज्ञानावरण। पहले तो पांच समान भाग दिए और उसमें ये एडिशनल दिया, उनको मिलाने पर ये मति ज्ञानावरण का शुद्ध ज्ञानावरण का अपना अपना सर्वघाती द्रव्य होगा। टोटल ज्ञानावरण का जो द्रव्य था उसको अनंत का भाग दिया, जो एक भाग है वो सर्वघाती है, उसको आवली के असंख्यात भाग का भाग देकर एक भाग अलग निकाला और बहुभाग का समान बंटवारा किया और एक भाग को घटते हुए बहुभाग बहुभाग करके मति ज्ञानावरण से लेकर केवल ज्ञानावरण तक दे दिया। अब जो ये सर्वघाती का हुआ, अब देशघाती का जो है उसमें भी ऐसा ही करना, परंतु वो चार में जाएगा, यानी वो आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर बंटवारा करने की बात वही है। सर्वघाती द्रव्य पांच में डिस्ट्रीब्यूट होता है और देशघाती यहाँ ज्ञानावरण में चार में हो, उसमें भी क्या करना, पहले आवली का असंख्यात भाग का भाग देना, एक भाग अलग निकालना जो बहुभाग के चार समान भाग करना, फिर एक भाग का बहुभाग बहुभाग करते हुए वो मति ज्ञानावरण में देना। हाँ बिल्कुल, केवल ज्ञानावरण अनंत वे भाग का भी पांचवा भाग, वो पांचवा भाग भी बहुत छोटा वाला पांचवा भाग, फिर भी उसका कार्य कैसा है। और फिर वो देशघाती का उसका हिस्सा और सर्वघाती का हिस्सा दोनों को मिलाने पर उसका मति ज्ञानावरण का पूरा द्रव्य होगा। अब दर्शनावरण में ऐसा ही है, अभी हमें तो पता लगा ना कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अभी इसको पढ़ेंगे फिर से दोबारा शुरू से। उत्तर प्रकृति प्रदेश बंध में सर्वप्रथम भागाभाग समुदाहार जानने योग्य है। आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले जीव को जो ज्ञानावरणीय कर्म का एक भाग प्राप्त होकर चार भागों में विभक्त हुआ है, उनमें से अभिनिबोधित ज्ञानावरणीय कर्म का एक भाग है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानावरणीय और मनपरे ज्ञानावरणीय कर्मों के विषय में जानना चाहिए, यानी जो देशघाती वो चार में विभाजित हुआ है, लिखा ना चार भागों में विभक्त हुआ है उनमें से बताए। हाँ, और जो प्रदेशाग्र सर्वघाती पने को प्राप्त है उनमें से इन चार में से एक एक ज्ञानावरण के लिए सर्वघाती प्रदेशाग्र का ये पांचवा भाग चाहिए। पांचवा भाग चाहिए, पूरे आगे क्या कहना चाहते पढ़ेंगे हम। जो दर्शनावरणीय का भाग आया है वह तीन भागों में विभक्त हुआ है, उनमें से चक्षु दर्शनावरणीय कर्म को एक भाग मिला है। इसी प्रकार अचक्षु दर्शनावरणीय और अवधि दर्शनावरणीय के लिए एक एक भाग जानना चाहिए। वहां जो प्रदेशाग्र सर्वघाती पने को प्राप्त है, अच्छा अच्छा ये चार भागों में विभक्त हुआ है ना, उनमें से सर्वघाती पने को प्राप्त हुआ है। फिर से जो चार में विभाजित हुआ है यहाँ क्या लिखा देखो, पूरा पढ़ लेते देखो। दर्शनावरण की बात पढ़ेंगे। जो दर्शनावरणी का भाग आया वह तीन भागों में विभक्त हुआ है। उनमें से चक्षु दर्शनावरणी कर्म को एक भाग मिला है। इसी प्रकार अचक्षु दर्शनावरणी और अवधि दर्शनावरणी के लिए एक एक भाग जानना चाहिए। वहाँ जो प्रदेशाग्र सर्वघाती पने को प्राप्त है, वहाँ यानी वो तीन में जो डिवाइड हुआ है, उनमें जो सर्वघाती है उनमें से इन तीन में एक एक दर्शनावरणी के लिए सर्वघाती प्रदेशाग्र का तीसरा भाग जानना चाहिए। यदि ये तीन प्रकृतियां ही हो, शेष छह प्रकृतियां न हो, तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण के लिए सर्वघाती प्रदेशाग्र का तीसरा भाग होवे। किंतु यथाविधि अन्य छह प्रकृतियां भी है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण में से प्रत्येक के लिए सर्वघाती प्रदेशाग्र का तीसरा भाग मिलता है। यह सब छह प्रकृतियों के साथ उन तीन प्रकृतियों का तथा इतर छह प्रकृतियों का जो प्रदेशाग्र है, उस प्रदेशाग्र का उन प्रकृतियों के अनुसार ही भाग जानना चाहिए। छह प्रकृतियों के बिना जो भाग तीन प्रकृतियों को मिलता है वह नौ भाग नहीं है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। हमने जो पढ़ा वो अधिक विस्तार से और क्लियर है। यहाँ जो कहना चाहते हैं यहाँ कहना तो वही है, परंतु उनमें से वो चार वहाँ पर यही बात लगाना, यदि वो चार ही होते तो वो ठीक था, परंतु यहाँ तो
चौथा भाग या पांचवा भाग
वहाँ यानी दर्शनावरण के लिए भी कहा तीन भाग में होता है सर्वघाती का, और फिर बाद में लिखा यदि तीन ही होते तो ये बात सही होती, परंतु यहाँ तो नौ का बंद है। यानी क्या है, पहले हम देशघाती और सर्वघाती विभाजन करके लेंगे। देशघाती वो मध्य ज्ञानावरणी चार में जाएगा और सर्वघाती वो पांच में जाएगा। यानी यहाँ वो क्लैरिटी नहीं है। आगे कुछ लिखा है क्या विशेषार्थ में? ना ना ना, बंद तो सबका है, नौका नौका। देखो ये विशेषार्थ में कुछ है क्या, देखेंगे 89 पर विशेषार्थ। यहाँ आठों कर्मों की उत्तर प्रकृतियों में प्रदेश बंद के भागाभाग का विचार किया है। गोमटसार कर्मकांड के प्रदेश बंद प्रकरण में इस भागाभाग का विशेष विचार किया है, इसलिए इसे वहां से जान लेना चाहिए। यहाँ उसका बीज रूप से विचार किया है। यानी यहाँ क्या कहना चाहते वो क्लियर नहीं हो रहा है। यदि बताए ना कि तीन ही होती तो ठीक है, तीन ही बनती तो प्रदेश सर्वघाती का तीसरा भाग जाता, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ छह प्रकृतियां भी बनती है, यानी ये सर्वघाती का द्रव्य नौ में बंटवारा। हमने जो अभी पढ़ा ना उसमें क्या लिखा है, देखो सर्वघाती और देशघाती का बंटवारा कैसे होगा, पहले में पहले पूरे द्रव्य को अनंत का भाग देंगे, यानी अनंत वा भाग, अनंत का भाग देकर आपको लिखना है तो लिखो, यानी ऐसा लिखना है कि हाँ घाती कर्मों के घाती कर्म के लिखो अपने द्रव्य को, यानी उसका जो सातवां आठवां जो भाग उसके खाते में आता है अनंत का भाग देकर एक भाग सर्वघाती और बहुभाग देशगामी। देशघाती द्रव्य है। अभी बंटवारे में क्या करना है, इसको आवली के असंख्यात विभाग, इन्हें अपने अपने द्रव्य, सर्वघाती को ऐसा लिखना, सर्वघाती को यानी सर्वघाती द्रव्य को, हाँ आवली के असंख्यात विभाग यानी दो डिवाइडेड बाय असंख्यात, भाग से भाग देकर एक भाग बिना बिना बहुभाग के अब यहाँ ज्ञानावरण में लगाना है, तो ज्ञानावरण में ज्ञा में पांच भाग करके, पांच भाग करना, पांच भाग, पांच समभाग करना।
ये सर्वघाती की बात है,
सर्वघाती की बात चल रही है। उस एक भाग के करना, हाँ समभाग करना, क्योंकि पांच ज्ञानावरण में देना है, और जो एक भाग बचा था ना, हाँ शेष एक भाग के, शेष लिखो, शेष एक भाग के यानी वो भागार वही अभी, के असंख्यात पे भाग प्रतिभागार से, प्रतिभागार करो उसको, बहुभाग बहुभाग करके उसी प्रतिभागार से यानी अवली के असंख्यात पे भाग प्रमाण प्रतिभागार से बहुभाग बहुभाग करके मति ज्ञानावरण आदि में लेना क्रम से, ऐसा लिखो म श्रु मन के में देना शॉर्ट में, हाँ केवल तक क्रम से देना। अब यहाँ लिखना इसी पद्धति से यानी ऐसे भाग देकर बहुभाग हो, इसी पद्धति से देशघाती का द्रव्य या देशघाती द्रव्य चार में विभाजित करना, चार में क्या हुआ, देशघाती भी द्रव्य है और सर्वघाती भी है, केवल ज्ञानावरण में मात्र सर्वघाती का पांचवा भाग है। यानी इन्होंने ये बात विस्तार दी नहीं, जैसे योग स्थानों में भी उन्होंने उपवादी की वैसे चर्चा नहीं की है, वैसे यहाँ पर भी वो चर्चा नहीं हुई है। हाँ यानी वो जरा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए उन्होंने लिखा ना विस्तार से जानकर। इसलिए चौथा लिखा वहां क्वेरी करके पांचवा लिखना, उन्होंने इस पद्धति से लिखा है, यदि चार ही होते तो चौथा भाग मिल जाता, परंतु यहाँ चार नहीं पांच का बंद है, इसलिए सर्वघाती का पांच में चला जाएगा। अब हम आते हैं 88 पेज पर, आगे पढ़ेंगे नया पैराग्राफ। हो गया। अन्यतर वेदनी के लिए जो एक भाग आया है, ज्ञानावरण बताया, दर्शनावरण में नौ में चला जाएगा, वहां पर भी कैसा लिखना है? सर्वघाती कितने हैं? छह है। केवल दर्शनावरण और छह, पांच निद्रा मिलकर छह है, तो उसमें पहले अनंत का भाग देंगे। और जो अनंतवा भाग है जिसको हम कहेंगे सर्वघाती द्रव्य, दर्शनावरण का सर्वघाती द्रव्य, तो कितने में डिवाइड होगा? नौ में। वैसे जो हमने जिस क्रम से देखते उसी क्रम से चला जाए। और फिर जो देशघाती है वो तीन में जाएगा, और सर्वघाती और देशघाती की टोटल करके वो चक्षु दर्शनावरण का अपना अपना द्रव्य होगा। देखो पहला बहुभाग उस ज्ञान वृद्धि को देना, फिर निद्रा निद्रा को देना, ज्ञान वृद्धि निद्रा निद्रा पिछला पिछला निद्रा पिछला, इस तरह से।
और केवल दर्शनावरण को सबसे कम जाता है। नहीं वो तो उसके नीचे है,
वो तो
पहला ज्ञान वृद्धि को, पहला बहुभाग ज्ञान वृद्धि को, पीछे निद्रा निद्रा, पीछे पतला पतला निद्रा पतला, पीछे चक्षु, अरे चक्षु दर्शन चक्षु दर्शन,
नौ तो समान भाग किए। फिर एक भाग को प्रतिभाग देकर बहुभाग स्त्यांग वृद्धि को देना कहा, फिर निद्रा निद्रा,
पीछे तत्ला
प्रचला। देखो अनुक्रम से पहले स्त्यांग वृद्धि, फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, और एक भाग केवल दर्शनावरण। देखो क्रम लिखना, दर्शनावरण में क्रम लिखना केवल। निस्त्यान वृद्धि शॉर्ट फॉर्म में लग सकते हैं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, फिर चक्षु दर्शनावरण, चक्षु द लिखो, फिर अचक्षु, हाँ सर्वघाती का, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण।
चक्षु दर्शनावरण,
चक्षु अचक्षु अवधि केवल सर्वघाती। और देशघाती में तो जाहिर है चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तीन में ही जाएगा। चक्षु चक्षु अवधि, वेदनी की बात। अन्यतर वेदनी के लिए, अन्यतर नहीं कोई भी, क्योंकि बनते तो एक ही एट अ टाइम, जो चक्षु अचक्षु अवधि,
तो सबसे ज्यादा चक्षु में देगा।
हाँ यानी पहले उसके भाग देना, बहुभाग के समान भाग करना, बहुभाग बहुभाग चक्षु दर्शनार्थ और चक्षु दर्शनार्थ, और एक भाग का बहुभाग, फिर शेष भाग का बहुभाग, फिर शेष भाग।
सर दर्शनावरण की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? टोटल चक्षु दर्शन सबसे ज्यादा, पीछे अतक्षुर दशा हो रहा है, पीछे औजी दशा हो रहा है, पीछे इस ज्ञान रूपी दीदा दीदा पतला पतला निद्रा पतला और पीछे लास्ट में केवल सबसे कम
केवल दर्शन आवरण सबसे कम सर्वघाते में पहले स्थान बोलते टोटल की कहे
टोटल का भी नहीं
है सबसे ज्यादा चक्षु दर्शन दोनों का आता है ना उसमें तो वेदिनी की बात पूछ देख रहे थे अन्य तरह ने कोई भी जो वेदिनी जो बन रहा है जो एक भाग आता है जो मूल प्रकृति का वो सबका सब उसी में जाता है वह समय प्रबंधक का आठवां भाग है ऐसा जानना चाहिए यानी आठ प्रकृति बनती है ऐसा मिलकर आठवां भाग लिया बस इतना ही यानी मूल प्रकृति का जो हिस्सा है वो सबका सब जाएगा जो मोनिय का भाग आया है वह दो भागों में विभक्त है कषाय वेदिनी के लिए एक भाग और नो कषाय वेदिनी के लिए एक भाग दर्शन मुनि चारित्र मुनि को अलग से नहीं लिया कषाय वेदिनी है पर मिथ्यात्व का चाहिए ना देखो
आगे
देखो मैं कर्मकांड में से पढ़ कर बताती हूँ मोनिम के विशेष है वो कहते हैं पेज नंबर 207 हाँ 207 कर्मकांड का मैंने वो गाथा है 202 मोनि कर्म में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संज्वलन प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोध मान ये ऑर्डर है पहले मिथ्यात्व फिर अनंतानुबंधी लोभ माया क्रोध मान फिर संज्वलन लोभ माया क्रोध मान फिर प्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोध मान हाँ सब में इसी ऑर्डर से मोहनीय में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी फिर संज्वलन लेना फिर प्रत्याख्यानावरण फिर अप्रत्याख्यानावरण और उसमें भी लोमा क्रोमा यानी लोभ हाँ लोभ माया क्रोध और मान
यही
अभी इसकी बात सुनो बात बाकी प्रश्न लिख के रखो अनंतानुबंधी संज्वलन प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान
एक चार दो तीन तीन दो
एक
चार तीन पहली चौकड़ी पहली चौकड़ी फिर चौथी चौकड़ी फिर
चार तीन दो चार माया
ये सब में ऐसा है ना
चार तीन इसे कॉमन भी देखा जाए तो लोग पे सबसे ज्यादा जाता है
इन 70 प्रकृतियों को हीन क्रम अर्थात अनुक्रम से हीन हीन द्रव्य देना ये सब सर्वघाती है सर्वघाती द्रव्य देशघाती सर्वघाती दोनों में चले जाएंगे उसमें भी जाएंगे नौ कषाय नौ है देखो पांच नौ कषायों का भाग संज्वलन के भाग समान जानना क्योंकि हम देखते हैं ना कि संज्वलन और पांच ही नौ कषाय बन देंगे एट ए टाइम ये बाकी तो 16 तो बनते ही बनते हैं तो इसमें तो कषाय नौ कषाय में इक्वल हो जाता है तो नौ कषाय नौ है, उनमें से एक समय में युगपत पांच ही का बंद होता है, वो पांच कौन से उन्होंने समझाया है। देखो अभी मोहिनी का पूरा विभाग बता रहे हैं, पेज नंबर 208, 203 की टीका डायरेक्ट। मोहिनी कर्म के पूर्वोक्त सर्व द्रव्य के प्रमाण को अनंत का भाग देने पर एक भाग सर्वघाती द्रव्य है, अवशेष बहुभाग देशघाती द्रव्य। देशघाती द्रव्य को आवली के असंख्यात विभाग का भाग देकर एक भाग छोड़कर बहुभाग का आधा तो नौ कषायों को देना और बहुभाग का आधा और शेष एक भाग रहा वह सर्व संज्वलन का देशघाती संबंधी द्रव्य जानना। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये तो सर्वघाती ही है। यहाँ तक ख्याल में ही ना? तो ये सर्वघाती का डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया कैसे होगा। अब जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उनमें कैसा आएगा? जो संज्वलन कैसी है देशघाती की, तो उनमें सर्वघाती भी द्रव्य जाएगा, देशघाती भी द्रव्य जाएगा। तो ये नौ कषाय का उसमें कहा कि जो संज्वलन का है उतना इसमें चला जाएगा, यानी देशघाती का द्रव्य जो है वो संज्वलन और उसमें क्या करना है, देशघाती के द्रव्य का आवली के असंख्यात भाग का भाग देना, एक भाग अलग निकालना और दो समान भाग करना और वो पूरा भाग संज्वलन को देने,
एक भाग पूरा
संज्वलन को देने, यानी आधे से ज्यादा संज्वलन को मिलेगा और आधे से कुछ कम पांच नौ कषाय को मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सर्वघाती को हमने कैसे किया था, वहां पर भी अवली को असंख्यात भाग का भाग देना, एक भाग अलग रखना, बहुभाग के सत्रह समान भाग करना, और फिर वो मिथ्या तो अनंत आनंदी जो हमने गाड़ी देखी क्रम उस क्रम से देना, और वो एक भाग का फिर बहुभाग बहुभाग करके पहले मिथ्यात्व को देना फिर अनंतानुबंधी लोभ को देना। हाँ, इस तरह से कुछ कम आता। अब जो संज्वलन के खाते में जो देशघाती आया है तो उसको फिर प्रतिभाग प्रतिभाग करके पहले लोभ को देना फिर माया को देना फिर क्रोध को देना फिर मान को देना। यहाँ तो लिखा है मिथ्या तो बारह कषाय का सर्वद्रव्य सर्वघाती ही है, बारह कषाय संज्वलन बिना, और नौ कषाय का सर्वद्रव्य देशघाती ही है, परंतु तो नौ कषाय में सर्वघाती देशघाती दोनों होंगे ना, उनका नहीं होता
सर्वघाती
कभी
जाएगा
ना,
कभी जाएगा।
हाँ, अब नौ कषाय का जो द्रव्य उसमें तो तीन या पांच ही बनते हैं, उसके पांच समान भाग करना, उसमें एक भाग निकालना बहुभाग के पांच समान किए, फिर जो पहला बड़ा बहुभाग है तो जो वेद बन रहा है उसमें देना, वेद में देना जो बन रहा है, तो फिर एक भाग का प्रतिभाग रति अरति में से जिसका बंध है उसमें देना, फिर एक भाग का प्रतिभाग हास्य और शोक में से जिसका बंध हो रहा है उसको देना, फिर एक का बहुभाग भय को देना और अंत में जुगुप्सा को देना। देखो अभी मोहिनी का हम पहले लिखे लेंगे, मोहिनी में कैसे करना कि सर्वघाती द्रव्य, अभी उसका क्रम केवल लिखना ना, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संज्वलन प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान लोभ माया क्रोध मान, इस तरह से उसमें सत्रह में देना, यानी पहले तो 17 भाग करना, तो बहु भाग वगैरह देना, एक एक भाग को फिर बहु भाग करना, ये ख्याल में है ना बात। हम वो डिटेल नहीं लिखेंगे, वो हमने ज्ञानावरण में लिख दिए, हमें तो केवल क्रम कौन सा है उसको लिखना। हाँ, अब देशघाती का देशघाती द्रव्य पहले आधा आधा जाएगा संज्वलन में और लोकशय में। तो कहते कि आवली के असंख्यात भाग का भाग देकर प्रोसेस तो ही है, परंतु पूरा एक भाग इसमें देना है, वो बहुभाग एक भाग नहीं देना है। पहला अवली का संख्या तो भाग का भाग दिया, नहीं एक भाग अलग रखना, एक भाग बिना
आधा करने के बाद
नहीं, नहीं पहले एक का एक भाग अलग निकालो और बहुभाग के दो आधे करो। फिर से देशघाती द्रव्य है, सर्वघाती का तो बस बंटवारा 17 में हो गया, अब देशघाती का किस में करना है, संज्वलन में और नौकषाय में। संज्वलन में दोनों जाएगी सर्वघाती देशघाती, तो क्या करना अभी देशघाती द्रव्य अवली के असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग बिना बहुभाग बहुभाग के दो भाग करना। इसका किसमें देना, संज्वलन में और यानी संज्वलन 4 में और नौ कषाय 5 में, क्योंकि 5 का बंद होता है बराबर। अब संज्वलन में और क्या देना, एक भाग पूरा उसमें देना, अवली के असंख्या भाग से भाग देकर एक भाग अलग रखा था, बहुभाग नहीं पूरा, वही तो मैं कब से कह रही हूँ। फिर से देखो देखो, जैसे हजार हजार परमाणु है, हमने 10 से भाग दिया, कितने आए,
100
हो गए, 100 को अलग रखो एक भाग अलग, कितने रह गए, 900, 900 पे दो भाग करना, 450 आधा उसका आधा हो गया। अब ये 450 में वो 100 अलग रखे थे, वो सारे 450 संज्वलन को देना, तो संज्वलन को 550 मिल जाएंगे और नौ कषाय को 450 मिल जाएगा।
सो मोदी ने सबसे ज्यादा करके संज्वलन लोभ को
वो अभी लोभ में हमने नहीं भेजा, हमने संज्वलन को देखा। आप आगे बहुत गाड़ी बढ़ाते हैं, लोगों को समझने तो दो, वो पूरा संज्वलन को देना। अब संज्वलन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बात की बात है, अभी डायरेक्ट वो अब स्टेप मिस मत करो, हम जो कह रहे हैं वो लोगों को थोड़ा थोड़ा पचने दो, है ना।
एक प्लस
हाँ, नौकषाय में केवल वो एक जो छोटा आधे से थोड़ा कम था वो उसमें चला गया, यहाँ तक आ गई ना बात। अभी हमको ये लेना है कि जो संज्वलन में जाता है वो कैसे जाएगा, तो लोग माया क्रोध मान, यानी लोमा क्रोमा। अब नौ कषाय का कैसे जाएगा, तो उसका एक भाग निकालो, बहुभाग के 5 भाग करो, फिर पहला वेद को जाएगा। अब नौ कषाय में यानी नौ कषाय द्रव्य वही वही अवली का संख्या भाग का भाग देकर एक भाग बिना बहुभाग पांच में है और फिर एक भाग कैसे देना, एक भाग का क्रम से क्रम लिखना, वो बहुभाग हुआ हम समझे। पहले में पहले वेद, रति अरति, फिर हास्य अशोक, जो कोई बन रहा नहीं, पहले रति अरति मिल जाए, नहीं बहुभाग 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 का एक भाग बहुभाग यानी एक भाग बहुभाग देना, एक भाग का फिर बहुभाग देना, फिर एक भाग का बहुभाग देना, इस तरह से। इसलिए क्रम से लिखना, एक भाग का बहुभाग क्रम से वेद में जाएगा, फिर रति आरती जो बन रही है, फिर हास्य अशोक जो बन रहा है, फिर भय में, और अंतिम एक भाग जुगुप्सा में। एक भाग के बहुभाग बहुभाग, देखो देखो एक भाग बाकी रखा, बहुभाग के पांच समान भाग किए, समान भाग तो सबको दे दिए, वेद में रति अरति सब में एक एक भाग दिया। अब जो एक भाग बचा था पहले, फिर उसी को औली का संख्या तो भाग का भाग दिया, पहला बहुभाग वेद में गया, एक भाग का बहुभाग वेद में गया, फिर जो रिमेनिंग एक भाग उसका फिर बहुभाग करो, वो रति अरति में दिया, फिर जो एक भाग बचा फिर उसका सब में प्रोसीजर यही है, प्रतिभाग वही आवली का संख्या तो भाग प्रतिभागार का प्रमाण होता है।
सो भोली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सबसे ज्यादा का संतुलन लोग पीछे माया, पीछे क्रोध, पीछे मान, पीछे वेद, पीछे रति अरति, रति अरति दोनों में खींचो बनता है उसको, पीछे हर्ष शोक, पीछे भय, पीछे जुगुप्सा, पीछे मिथ्यात्व, पीछे मिथ्यात्व के सबसे पीछे उसके पीछे मिथ्यात्व
आएगा। नहीं मिथ्यात्व में अनंत बहुभाग गया था ना,
अनंत का बहुभाग पीछे मिथ्यात्व आया, पीछे अनंतानुनती रोमा फोमा,
अनंत अप्रत्यक्ष अनावरण मान में सबसे कम होगा।
हाँ अनंतानुनती पीछे प्रत्यक्ष अनावरण और पीछे अप्रत्यक्ष, बराबर।
किसके वो तो मैं उसमें तो 24 वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो अंक संदृष्टि बनाई थी मैंने, मैंने शिविर में भी ली थी उसकी पूरा। अरे बाप रे ओवर टाइम हो गया, चलो नहीं मुझे अभी 128 ही मिनट हो गए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका।